मुनिवर श्री क्षमा सागर जी गुरु के चरणों में सत सत वंदन सत सत वंदन हम सब श्रेष्ठ आते हैं।
भवबीजाङ्कुरुजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
पिछले दिनों एक ही बात पर विचार किया है कि जैसे बने अब हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार शुरू करना चाहिए और उस विचार में रोज रोज दृढ़ता आती चली जावे ऐसा भी पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रद्धा हमें सहारा देती है, श्रद्धा हमें अच्छा बनने के लिए प्रेरणा भी देती है और अगर हम श्रद्धा के साथ बताए हुए रास्ते पर चलें तो श्रद्धा हमें चलने में मदद भी करती है। आने वाली विपत्तियों में हम कैसे धैर्य रखें ये भी श्रद्धा ही हमें सिखाती है। इतना ही नहीं, कभी हम चूक जाएं तो हमारी उस भूल को सुधारने के लिए भी श्रद्धा ही हमें मार्ग दिखाती है। कभी हम गिर जाएं तो संभाल भी लेती है। श्रद्धा हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करती है और उसे अच्छा बनाने में सबसे बड़ा हाथ श्रद्धा का है। ज्ञान और आचरण हमारे जीवन को जो ऊंचाई नहीं दे पाते हैं वो श्रद्धा देती है। श्रद्धा से समन्वित ज्ञान और आचरण हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिना श्रद्धा के जो ज्ञान और आचरण है वो हमारे जीवन को बाह्य परिवर्तन दे सकता है लेकिन आंतरिक जगत में कोई परिवर्तन ज्ञान और चारित्र से नहीं आता बिना श्रद्धा के। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर श्रद्धा और समर्पण प्रकट होने में के लिए तैयारी करें। श्रद्धा कहीं से आने वाली चीज नहीं है, समर्पण कहीं और से एडॉप्ट किया जा सके ऐसा भी नहीं है, वो हमारे भीतर है लेकिन हमारे मोह हमारी अज्ञानता हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है उसकी वजह से वो ढक गया है। हम निरंतर रोज रोज विचार की प्रक्रिया से उस आवरण को हटाएं तो श्रद्धा हमारे भीतर अपने आप प्रकट होती चली जाएगी। इतना ही पुरुषार्थ हमें करना है, श्रद्धा को लाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, श्रद्धा के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है। गुणों को हमें कहीं से लाना नहीं है, वो हमारे भीतर हैं, लेकिन वे जिन परतों में ढक गए हैं उन परतों को हटाना, ये हमारा अपना पुरुषार्थ है। अज्ञेय जी ने लिखा है कि सबके भीतर सोता है एक निर्मल जल का स्रोत, इस इंतजार में कि कोई आए और ऊपर की परतें हटाए और एक नई धार बहाए। हम सबके भीतर अच्छाइयों का झरना है, अच्छाइयों का स्रोत है, लेकिन हमारी अपनी अज्ञानता, हमारी अपनी असावधानी से वो विलुप्त प्राय हो गया, हमारे भीतर ही दब करके रह गया है। उसे हटाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं कि ऊपर की परतें हट जाएं और हमारे अंदर की जो श्रद्धा और समर्पण की सामर्थ्य है वो प्रकट हो जाए, ताकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी बाहर घटित होते देखते हैं उसकी वास्तविकता को जान सकें। और वास्तविकता तभी मालूम पड़ती है जब हम अपनी आंखें राग द्वेष से मुक्त कर लेते हैं। जब हम श्रद्धा की आंख से चीजों को देखने लगते हैं तब वास्तविकता दिखाई पड़ती है। इन दो आंखों से तो क्या दिखाई पड़ता है, अपना मन खट्टा होता है, अपना मन अच्छा नहीं होता तो सारी दुनिया बेमानी मालूम पड़ने लगती है, सब कुछ उदास सा दिखने लगता है, और मन जरा प्रसन्न हो, अच्छा हो तो सब अच्छा लगने लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है फिर भी हम उससे चूक जाते हैं। तो वास्तविकता देखने के लिए तो जरूरी है कि हमारे अंदर श्रद्धा की आंख प्रकट हो, और उसके लिए हमने पुरुषार्थ भी किया है कि बिना उसके हमारे श्रद्धा की आंख नहीं खुलने वाली, सहारा चाहिए। जिनकी आंख खुल गई है उनके चरणों में बैठना पड़ेगा, वो भी हमने पिछले दिनों समझ लिया है। लेकिन ये श्रद्धा की आंख कैसे खुलेगी, जब रविन्द्रनाथ ने अपनी गीतांजलि लिखी और उस पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला, तब उनके पड़ोसी ने एक दिन अचानक उनसे पूछ लिया कि जिस गीतांजलि में परमात्मा की स्तुति गाई है कभी उस परमात्मा से साक्षात्कार हुआ या कि ऐसे ही लिख दिया। तब रविन्द्रनाथ ने अपने संस्मरण में लिखा कि मुझे पहली बार बहुत मुश्किल खड़ी हुई, जितनी मुश्किल तो मुझे गीतांजलि लिखने में नहीं हुई, उतनी मुश्किल उसके प्रश्न के समाधान खोजने में मुझे लगने लगी कि हाँ सचमुच मैंने ईश्वर से साक्षात्कार तो किया ही नहीं, मुझे तो कभी नहीं दिखा। बड़े परेशान उन्होंने लिखा कि मैं कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकला कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पड़ोसी फिर से मिल जाए और फिर से मेरी तरफ देखकर अगर मुस्कुरा भी देगा तो मेरी तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक सुबह जबकि सूरज नहीं उगा था, उनका मन हुआ कि टहल के आते हैं, इतने सवेरे कौन मिलने वाला है, और जल्दी से वापस लौट आएंगे। और वहां वेस्ट बंगाल में तो ऐसा है कि हर आदमी लगभग अपने घर के सामने एक पोखर, एक छोटा सा पानी का तालाब जैसा बना के रखता है, उसको पोखर बोलते हैं वे, उसमें वे मछलियां पालते हैं। अच्छा पानी नहीं होता, गंदा पानी है, कीचड़ भी उसमें रहता है। वे चले जा रहे हैं रास्ते के किनारे किनारे, और अभी सूरज नहीं उगा है, चंद्रमा पूरी चांदनी बिखेरता हुआ आकाश में दिखाई पड़ रहा है, और अचानक वे एक पोखर के किनारे खड़े हुए। उसमें तो कीचड़ है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसमें चंद्रमा की परछाई एकदम निर्मल और उज्जवल उन्हें दिखाई पड़ी। बस जैसे ही उन्होंने उस गंदे पानी में भी चंद्रमा को निर्मल और स्पष्ट प्रतिबिंबित होते देखा, तो बहुत जोर से हंसे और वापस लौट आए। उन्होंने लिखा कि मैं उस दिन इस इंतजार में रहा कि मेरा पड़ोसी मुझे मिल तो जाए। अभी तक तो उस पड़ोसी से बचने का मन होता था, आज मन हो रहा है कि दिन भर में वो मिल तो जाए, मैं उसे बता दूं कि हो गया, मुझे साक्षात्कार हो गया परमात्मा का, जो गीतांजलि लिखते समय नहीं हुआ वो आज हो गया। और मिल गया पड़ोसी और उससे कहा कि मुझे साक्षात्कार हो गया, और सारी घटना बताई कैसे साक्षात्कार हुआ। इस राग द्वेष के संसार में भी वो जो वीतरागता है वो फिर भी ज्यों की त्यों निर्मल और स्पष्ट है, जैसे कि चंद्रमा की निर्मलता को जो कि प्रतिबिंबित हो रहा है उस गंदे जल में, जल की गंदगी प्रभावित नहीं कर पाती। मेरे हृदय में भी तमाम राग द्वेष और विकृतियों के बावजूद भी मेरी अपनी जो स्वाभाविक निर्मलता है, वो जो मेरा परमात्मापन है, वो ज्यों का त्यों है। मुझे ये बात आज अनुभव में आ गई, ये बात इस बात पर मुझे आज विश्वास हो गया। और हमें करना क्या है? करना यही है, जो संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता है और आत्मा का जो स्वरूप है वो हमें ठीक ठीक मालूम पड़ जाए, एक ऐसी आंख, एक ऐसी दृष्टि की निर्मलता हमें प्राप्त हो जाए, तब फिर देखिएगा कि हमारा जीवन, हमारा दृष्टिकोण बदलने से अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। मैं तो देखता रहता हूं कि दृष्टिकोण बदलता नहीं है और सारा कुछ बदल जाता है, और फिर उसके बदल जाने से बाहर कोई बहुत प्रॉपर मैसेज नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जीवन में तो वही राग द्वेष और वही विषय कषाय वो पड़ी रह जाती हैं, और हम बाह्य कुछ थोड़ी सी क्रियाएं दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, पर ये चीजें हमारे जीवन को बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा नहीं बना पाती। जरूरी है कि हम एक ऐसी दृष्टि प्राप्त कर ले गए। ये दृष्टि और करती क्या है? अब जरा देखें, हमें दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो गई, हमने मान लिया, अब इतने तीन चार पांच रोज में, और हमने अपने विचार की प्रक्रिया से और अपनी दृष्टि को थोड़ा सा निर्मल बना लिया है। अब जरा देखें कि कितनी वो निर्मल हुई है। दृष्टि निर्मल हो जाती है तो कितनी चीजें हमारे भीतर ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, हमारे भीतर उन सब चीजों का प्रगटीकरण अपने आप होना शुरू हो जाता। कसौटी है, हम उस पर अब कस के देखेंगे अपनी श्रद्धा को कि हाँ सचमुच हमारे अंदर ऐसी दृष्टि की निर्मलता या ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है जिससे कि मेरे भीतर जो क्वालिटेटिव चेंजेस होना चाहिए थे वो होना शुरू हो गए हैं, मेरी अपनी क्वालिटीज अब अपने आप बाहर प्रकट होने लगे। जब कोई विपत्ति आती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, ये सबके साथ है। जब कोई दुख आता है हम बेचैन हो जाते हैं, जब कोई सुख का अवसर आता है हम एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। सुख और दुख दोनों को एक जैसा क्या हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं? श्रद्धा और दृष्टि की निर्मलता तो हमें यही सिखाती है, यही क्वालिटी हमारे भीतर आ जाएगी कि विपत्ति फिर मुझे बेचैन नहीं कर पाएगी और सुख के क्षण मुझे एक्साइट नहीं कर पाएंगे, मुझे अहंकारित नहीं कर पाएंगे। अगर ये चीज हमारे भीतर आ जाए तो समझना कि हाँ श्रद्धा हमारी अब बहुत निर्मल हो गई है, या कि दृष्टि हमें वास्तविक मिल गई है, वरना तो हम लोग श्रद्धा और भक्ति बहुत प्रकट करते हैं लेकिन जीवन में जब हमारे विपत्ति या कि सुख का अवसर आता है तब हम चूक जाते हैं। टोटल एक्सेप्टेशन, पूर्ण स्वीकृति, जो कुछ भी घटित हो रहा है जीवन में उसको सहज रूप से स्वीकार करते चले जाना, अगर वास्तविक दृष्टि मिल गई है तो ठीक ऐसे ही जैसे कि एक बेटा है किसी के और एक बिटिया है, और घर में एक मुकुट रखा हुआ है सोने का, और मन है पिता का कि अब बेटी का ब्याह होने को है, इसका हार बनवा दे वह, तो सोने का मुकुट तोड़वा करके और बिटिया के लिए हार बनने के लिए चला गया है, तो बेटे को बहुत दुख हो रहा है कि मेरा मुकुट अब नष्ट किया जा रहा है, बिटिया खुश है कि मेरे लिए हार बनाया जा रहा है, पिता को तो दोनों में ही बराबरी है, सोना तो कहीं नहीं गया, चाहे मुकुट के फॉर्म में हो चाहे वो हार के फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, पिता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसी ही दृष्टि हमारी है? अभी तो नहीं है, अभी तो सिर्फ विचारों में है, अभी तो अनुभूति में भी अगर ऐसा ही आना शुरू हो जाए तब मानिएगा कि हाँ हमें वो दृष्टि प्राप्त हो गई है। इसीलिए तो रेयर है, बहुत कठिन है, इसीलिए आज के समय में ऐसी दृष्टि की निर्मलता जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, जो कि बहुत दुर्लभ है, और एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर उसी संसार के कीचड़ में रहते हुए भी व्यक्ति अलिप्त हो जाता। कैसे हो जाता होगा अलिप्त? सब कुछ करते हुए भी और उससे ऊपर है ऐसा ऐसा कोई हमारे अंदर एक भाव, एक अनुभूति हमारे भीतर उत्पन्न हो, हमारा प्रयत्न तो यही। एक छोटा सा उदाहरण अपन देख लें जिससे कि मालूम पड़े कि हाँ ऐसा संभव है। इस तरह की दृष्टि हमें मिल जाए तो हमारे जीवन में ऐसे अवसर आने पर हम ज्यादा मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। लेकिन उदाहरण तो उदाहरण है, हमें उसको अपने जीवन में उसको सूत्र की तरह पिरो करके रख लेना चाहिए ताकि वो कभी काम आए। एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन कोई कितना भी बड़ा हो विपत्ति उससे भी आती है। तीर्थंकरों के भी अपने ऊपर विपत्तियां आई और राजा के ऊपर विपत्ति ये आई कि पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सेनाएं जहां तक लड़ पाई लड़ी। उसके अपने बचपन का एक दोस्त, वो बहुत बड़ा साधु बन गया था। तब एक दिन उसी राजकाज के दौरान राजा ने अपने उस साधु बने मित्र से कहा था कि कोई एकाध मेरे जीवन के लिए सूत्र तो दे दो कि कभी कोई विपत्ति आए तो मैं उसके सहारे और मुश्किल को आसान बना करके उससे निकल सकूं। अब चूंकि मित्र था और साधु तो सबका ही मित्र है, सबके कल्याण की भावना जिसके भीतर है वो ही तो साधु है। तो उन्होंने वैसे भी और एक मंत्र सूत्र की तरह दे दिया, पर कहा कि सुनो इसे अभी खोल कर मत देखना, इसे तो तुम दिव्य रख करके अपने पास रखे रहो। जब बहुत बड़ी विपत्ति आए जिससे कि बचना मुश्किल हो,
अब कोई उपाय नहीं पूछ रहा है, तब इसको निकाल ले, तब इसको देख लेना। राजा ने कहा ठीक, कभी अवसर ही नहीं आया अपने राजकाज के दौरान, लेकिन आज जब राजपाट छूट गया है और जंगल में दिन बिताना
के भीतर रख करके अपने पास रखे रहो, जब बहुत बड़ी विपत्ति आए जिससे कि बचना मुश्किल हो, अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तब इसको निकाल लेना, तब इसको देख लेना। राजा ने कहा ठीक, कभी अवसर ही नहीं आया अपने राजकाज के दौरान, लेकिन आज जब राजपाट छूट गया है और जंगल में दिन बिताना पड़ रहे हैं, और उस दौरान भी अचानक ऐसा हुआ कि दूसरे राज्य के सैनिक राजा को ढूंढते हुए आ गए। अब राजा को वहां जंगल से भी भागना पड़ा और भागते भागते घोड़े पर और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे कि जहां सामने खाई है और पीछे सैनिकों के आने की आवाज आ रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इस विपत्ति में भी कैसे धैर्य रखा जाए, एक ऐसी दृष्टि कैसे मिले जिससे कि मैं इस विपत्ति से बच जाऊं। ये श्रद्धा है जो कि हमें इस तरह की विपत्ति में भी धैर्य बना सकती है। ये हमारा विश्वास है बस, लेकिन उस समय वो विश्वास गायब हो जाता है सबके हाथ से। और उसे तुरंत ध्यान आया कि मेरे उस मित्र ने जो साधु बन गया है मुझे ऐसे मौके के लिए एक सूत्र दिया था, एक मंत्र दिया था, मैं जरा आज उसको देखूं। वर्षों से पड़ा हुआ है बिजली में बंद और उसने निकाल करके उसको खोल करके कागज पर देखा तो उसमें मंत्र क्या था, उसने तो सिर्फ इतना ही लिखा था कि दिस डे विल ऑल्सो पास, ये दिन भी बीत जाएगा, ये क्षण भी गुजर जाएगा, डोंट वरी डोंट फियर, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब दिन निकल जाते हैं जीवन में, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे दिनों में हम अहंकार करें तो भी निकल जाते हैं, बुरे दिनों में हम शोक से और विड्रॉ कर लें, बहुत अधिक बेचैन और चिंतित होकर के एक कोने में जाकर के बैठ जाएं, तब भी वो दिन व्यतीत हो जाते हैं। दिस डे विल ऑल्सो पास, ये समय ये दिन भी निकल जाए, बस इतनी सी बात। और राजा को बहुत बहुत साहस आ गया। राजा ने पीछे मुड़कर के देखा, आगे तो खाई है, पीछे मुड़ के देखा तो पता नहीं ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा संयोग हुआ कि वे सैनिक जिस रास्ते पर राजा गया था वहां न जाकर के दूसरे रास्ते पर मुड़कर उसे और आगे खोजने चले गए और राजा उस विपत्ति से बच गया। और बच ही क्या गया, फिर से अपने सैनिकों को जोड़कर उसने अपना राज फिर से ले लिया। और अब जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं। राजा अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ है और अचानक इतने सारे खुशी के माहौल में और उसे फिर वही बात याद आ गई कि उस कागज में क्या लिखा था, दिस डे विल ऑल्सो पास। ये खुशियों के क्षण ये भी ठीक वैसे ही बीत जाएंगे जैसे उस समय विपत्ति के क्षणों में लगता था कि कैसे बीतेंगे। और लिखा तो उस कहानी में यही है कि फिर राजा राजपाट करते हुए भी उस राजपाट में लिप्त नहीं हुआ, वो तो वहां रहते हुए भी और मानो वहां नहीं था, उन सब चीजों से वो ऊपर उठ गया। क्या ये कहानी कोई हमें कोई मैसेज देती है? हमारे जीवन में तो ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है हम राजा नहीं है, ठीक है हमारे सामने कोई लड़ाई नहीं है ऐसी जो कि स्थूल हो, लेकिन हमें तो रोज लड़ना पड़ता है, अपनी कषायों से रोज लड़ना पड़ता है, हमें अपने मोह से, हमें अपनी अज्ञानता से रोज लड़ाई लड़नी पड़ती है। और हर बार हम अपनी अज्ञानता और कषायों से ही हारते हैं, किसी और से नहीं हारते, न किसी और पर हमारी जीत होती है। जीत हमारी तब होती है जबकि हम इन कषायों को जीत लेते हैं, और हार हमारी तब होती है जब हम कषायों को अपने जीवन में जगह दे देते हैं और उनसे प्रेरित होकर के अपनी अज्ञानतावश उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, तब हम ही हार जाते हैं। ये इस विपत्ति से जो कि रोज रोज की है उससे बचने के लिए भी ये श्रद्धा ही हमें एकमात्र सहारा देती है। मार्ग कौन सा सही है ये दिखाती है, और अगर हम चलने लगे तो वो हमारी मदद भी करती है। इतने सारे काम ये श्रद्धा ही करती है। हमें इस संसार में हर स्थिति में निर्भय और निशंक होकर के जीवन जीने की, अत्यंत निश्चिंत होकर। भैया जिसका जितने लोगों से प्यार है वो उतना ही निश्चिंत अनुभव करते हैं। आपके पड़ोसी से आपके अच्छे संबंध हैं, ताला खुला छोड़ करके या उसके जिम्मे छोड़ करके दो चार दिन की यात्रा पर निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं होती, बड़ी निश्चिंतता रहती है कि पड़ोसी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, घर छोड़ के भी आए हैं तब भी निश्चिंत हैं, कोई हानि नहीं होने वाली। और ऐसा ही प्राणी मात्र के प्रति अगर यही दृष्टि की निर्मलता हमारे जीवन में आ जाए तब फिर बताइएगा कितनी निश्चिंतता आएगी, कितने हम निर्भय हो जाएंगे। अभी तो कदम कदम पर जो है बाजू वाले से भी हमें भय लगता है, अपनों से तक हमें भय लगने लगता है कि कभी यही हमारा बिगाड़ न कर दे। अभी हमारे भीतर इतना विश्वास है ही नहीं, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है कि कोई मुझे मुश्किल में कब डाल सकता है और कोई मेरी मदद कब कर सकता है। दोनों स्थितियों में मेरे अपने भीतर के जो कर्म हैं वही इसमें सहयोगी बनते हैं, चाहे विपत्ति आवे और चाहे मेरे जीवन में कोई सुख के अवसर आवे। ऐसी अगर दृष्टि हमें प्राप्त हो जावे, हम इतने निशंक हो जावे, तो ये एक क्वालिटी है, ये उस सम्यक दर्शन के साथ होने वाली एक विशेषता है। हम अपने भीतर झांक के देखें, रोज रोज तो पूजा करते हैं, रोज रोज भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, गुरुजनों के प्रति भी करते हैं, क्या हमारे भीतर ऐसी निश्चिंतता आ पाई है, ऐसे निर्भय हम संसार से हो पाए हैं? अभी तो लगता है कि आज तो स्वास्थ्य ठीक है, कल गड़बड़ ना हो जाए, रोग जन्य भय हमें इस भाव में तो इस संसार में तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, अगले भाव का क्या होगा, यहां पर भी तो ठीक है लेकिन और कहीं जाऊंगा तो और कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए, यहां मैं कितना असुरक्षित हूं, मेरी सुरक्षा करने वाला अपना कोई नहीं है, अकस्मात मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। कितने तरह के भय हैं हमारे जीवन, हम क्षण भर भी निश्चिंत होकर के नहीं जी पाते हैं, जबकि हम भगवान के चरणों में बैठ करके जो निश्चिंतता पाते हैं, क्या वो निश्चिंतता हमारी अपनी संसार में बनी रहती है? बनी रह सकती है अगर हमारी अंदर दृष्टि निर्मल हो जाए, हमारा विश्वास धीरे धीरे करके इतना मजबूत हो जाए अपने प्रति ही, अपने स्वभाव के प्रति, अपनी उस परम निर्मल अवस्था के प्रति यदि हमारा श्रद्धान अत्यंत तगड़ हो जाए तो ये चीज बहुत आसान है। विनोबा के जीवन में انہوں نے لکھا کہ مجھے اندھیرے سے اور اپنی پرچھائی سے بھے لگا کرتا ہے, اور میرے دونوں بھائی مانے, ایک تو شردھا سے اور دوسرے ترک سے, جان سے, دونوں بھائیوں سے مجھے مکت کر دیا. اندھیرے کے بھائی سے تو شردھا سے مکت کر دیا, جیسے ہی شردھا آئی ویسے ہی اندھیرے سے بھائی میرا مٹ گیا. مجھے اندھیرے میں جانے میں بہت ڈر لگتا تھا, تو ماں کہتی تھی ضرور سے جب اندھیرا جہاں ہوتا تھا کہ جاؤ فلانی چیز اٹھا کے لیاؤ, وہ سامان اٹھا کے لیاؤ. مجھے بہت ڈر لگتا تھا, میں کہتا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے میں وہاں نہیں جاؤں گا, تو ماں کہتی تھی کہ میں تو ہوں, میں آواز دے رہی ہوں تم آگے چلتے جاؤ اور سنو جب ڈر لگنے لگے تو بھگوان کا نام لینا, زور زور سے بھگوان کا نام لینا تو ڈر نہیں لگے گا. اور پھر جب ونوبا چلے جاتے تھے اور بیچ میں تو ڈر لگنے ہی لگتا تھا, ماں آواز دیتی جا رہی ہاں آپ پہنچ گئے ہوگے اٹھا لاؤ ڈرنا مت, اور ڈر لگے تو بھگوان کا نام لے لینا. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں زور زور سے بھگوان کا نام لینے لگتا تھا اور اندھیرے میں سے سامان اٹھا کے لے آتا تھا. دو چار بار میں میرے اندر یہ وشواس آ گیا کہ مجھے ڈر ہی لگتا ہے, وہاں مجھے کوئی وپتی آنے والی نہیں ہے اور میں نربھے ہو. ابھی اپن تو بھگوان کے چرنوں میں گھنٹوں بیٹھنے کے بعد بھی اور اپنی چھوٹی چھوٹی سی سانسارک چیزوں سے بھیبھیت ہو جاتے ہیں, چنتت ہو جاتے ہیں, پتا نہیں کیا ہوگا میرے جیون کا, کیا ہوگا, جو میں نے بویا ہوگا وہ میں کاٹوں گا, جو میں بو رہا ہوں وہ آگے فصل میرے جیون میں آنے والی, اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن یہ وشواس کون دلائے گا, کوئی اور دلائے گا, کوئی نہیں دلا سکتا. کوئی ہمارے چاروں طرف ہمیں پروٹیکٹ کر کے بھی کھڑا ہو جائے تب بھی ہم بھیبھیت ہو سکتے ہیں. چاروں طرف کا واتاورن اگر ہمیں نربھے بھی کرنا چاہے اور ہم بھیبھیت ہیں تو وہ واتاورن بھی ہمیں نربھے نہیں کر سکتا ہے. ہمارا اپنا آتم وشواس, ہماری اپنی شردھا, ہماری درشٹی کی نربلتا, یہی ہمیں نربھے کر سکتی اور نشنگ کر سکتی. اور دوسرا بھے ان کو لگتا تھا پرچھائی سے. جب بھی دھوپ میں پرچھائی پڑتی تھی تب یہ یہاں سے وہاں بھاگتے تھے اور کہتے ماں دیکھو وہ میرا پیچھا کر رہی ہے اور مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے, مجھے بچاؤ اس سے. ایک دن ماں نے جو ہے آ کر کے کہا کہ دیکھ تو اس سے بیکار میں ڈرا کرتا ہے, وہ تو تیری سب بات مانتی. وہ نہیں مانتی, وہ تو میرا پیچھا کرتی, میں کہیں بھی جاتا ہوں وہ پیچھے پیچھے آ جاتی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں بتاتی ہوں کہ کیسے تیری بات مانتی. اپنا ہاتھ تو رکھ سر پر. ہاتھ رکھا سر پر, دیکھ ذرا. اس نے بھی اپنا ہاتھ رکھ لیا سر پر. تیری سب بات مانتی وہ, تو بیٹھ کے دیکھ لے. اچھا بیٹھ گئے تو وہ بھی بیٹھ گئی چھایا. اب چھایا تو ہے, جیسا کرو گے ویسے. دیکھ تیری سب بات مانتی کہ نہیں. تب انہوں نے دیکھا کہ مجھے ہنسی آ گئی کہ ارے میں تو اس سے ڈر رہا ہوں, یہ تو میری سب بات مانتی ہے. شردھا اور ترک دونوں سے ہی بھے سے مکت ہو جاتے ہیں. شردھا کے ساتھ ترک کا کوئی میل نہیں ہے حالانکہ, پر دھیان رکھنا سمیک درشٹیر بھوتی نیتم گیان ویراگ شکتی. جیسے ہی درشٹی کی نرمالتا آتی ہے, گیان اور ویراگ دونوں کی سامرتھ ہمارے بھیتر آٹومیٹکلی آنا شروع ہوتی ہے, اور وہی چیز ہمیں پھر نربھے اور نشنگ کر دیتی ہے. ادمیو درشمیو تتم نانیہ چانیہ تھا اتکمپائے سامبوت تنمارگی سنشیا روچی. اگر آچاریہ سمنت بھدر سوامی کے چرنوں میں بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسی نشنک درشٹی ہونی چاہیے, ایسا درشٹی میں نشچنتا ہونا چاہیے, اور ایسا نسندیہ ہمارا جیون ہونا چاہیے کہ جو بھگوان نے میرے کلیان کے لیے کہا ہے, میری آتما کا جو سوروپ کہا ہے, ہاں واسطو میں وہی میرا سوروپ ہے, مجھے اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا. یہ بات الگ ہے کہ میری اجانتا کے کارن, میرے جان کی کمی کے کارن مجھے وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, میرے من میں کوشچن ہو سکتا ہے لیکن ڈاؤٹ نہیں. میرے من میں شنکا ہو سکتی ہے, کوشچن ہو سکتا ہے, کیوریوسٹی ہو سکتی, جگیاسا ہو سکتی ہے, اس کے سمادھان کی میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن سندیہ نہیں. ڈاؤٹ اور کوشچن میں فرق. کوشچن میں تو ہم اس چیز کو جاننے کے لیے پریتن کر رہے ہیں, اور ڈاؤٹ میں تو ہم نے مان ہی لیا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں. کہتے تو ضرور ہیں کہ سمیک درشن جانے چارے تر سے موکش راپتی ہوتی ہے ان کی ایک روپتا سے, لیکن کیا پتا ہوتی کہ نہیں ہوتی, یہ ڈاؤٹ ہے. لیکن سمیک درشن جان چارے تر سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہوگی, کیا سوروپ ہے سمیک درشن کا, یہ جاننا بالکل الگ بات. جیسا بھگوان نے ادمیو ایدرشمیو تتم نہ انیہ نہ اچانیہ تھا, جیسا بھگوان نے स्वरूप हमारे आत्मा का और समस्त पदार्थों का बताया है ठीक वैसा ही है, उसी प्रकार है, अन्न और अन्यथा नहीं है। ऐसी जो हमारे भीतर दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, इसको अपन दूसरे शब्दों में कहें, हमारे भीतर अपने प्रति जो विश्वास पैदा हो जाता है, अपने उस आत्मस्वरूप के प्रति जो विश्वास पैदा हो जाता है, उसी का नाम तो दृष्टि की निर्मलता है। और वो यदि हमें एक बार हासिल हो जाए हमारे मन में कोई संदेह, फिर शेष नहीं रहेगा और हम आसानी से अपने जीवन को अत्यंत निश्चिंता से, सब यही चाहते हैं भैया कि निश्चिंता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, कदम कदम पर जो है संदेह, कदम कदम पर जो है अनिश्चितता, बड़ी अनसर्टेनिटी लगती है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कैसा लगने लगता है, एक एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है, जीवन का व्यतीत होना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम अपनी श्रद्धा को और अधिक बढ़ाएं, हम अपनी दृष्टि को इस तरह का बनाएं जिससे कि ये विपत्तियां हमारे जीवन को बहुत विचलित ना कर पाए, और कभी सुख के क्षण आए तो उनमें भी हम अपने जीवन को और गाफिल ना होने दें। अगर इस तरह हम अपने जीवन को बनाएं तो हमारा जीवन जरूर से अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम सब दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, कल फिर अपन देखेंगे कि कैसे हम संदेह से रहित हो सकते हैं, किस तरह के संदेह हमारे जीवन में उठते हैं और उनसे हम कैसे मुक्त हों और कैसे हम अपनी दृष्टि को निर्मल बनाएं। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन इन सब बातों को अपने जीवन में लाकर अच्छा बन सके। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अतवावर शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्व का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट करते हो, तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की गलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया, शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु पर प्रणाम। मिथ्या तम नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो द्रव्य ज्ञान वेखो बंद विधवान वेखो स्वपर पहचान वेखो परम प्रमाणी है जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो ये ही दिन वाणी है उदक चंदन का दुलकोष